और कहीं कहीं अंतकरण चतुष्टय करते हैं तो 19 हो जाते हैं। चित्त और अहंकार को और जोड़ दो, चित्त का मन में और अहंकार का बुद्धि में समावेश करके दो बनाते हैं तो मन बुद्धि, और मन से चित्त को अलग और अहंकार को बुद्धि से अलग करते हैं तो अंतकरण चतुष्टय, ऐसे ये चार हो गए, मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि, 19 हो जाएंगे उस समय। इन सब को वायु शब्द से लेना। तो जैसे यहां पर वायु एक वेष्टि सूक्ष्म शरीर का उपलक्षण हुआ, ऐसे ये जो अमृतम अनिलम शब्द है इसे उपलक्षण समझना समष्टि सूक्ष्म शरीर का। तो जैसे वेष्टि सूक्ष्म शरीर 17 या 19 तत्वों का है, ऐसे समष्टि सूक्ष्म शरीर वो भी 17 या 19 तत्वों का है। आपके इस वेष्टि सूक्ष्म शरीर के जो अधिष्ठाता देव हैं, उन्हीं को कहा जाता है समष्टि सूक्ष्म शरीर। वेष्टि सूक्ष्म शरीर के जो 17 तत्व बताए उनमें से प्रत्येक तत्व का अलग अलग अधिष्ठाता देव है, और उन अलग अलग अधिष्ठाता देवों का मिलकर के समष्टि सूक्ष्म शरीर बन जाता है। वो जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसका उपलक्षण है यहां पर अनिल शब्द, इसलिए अनिल शब्द से समष्टि सूक्ष्म शरीर लेना अधिदैव भाव, और वायु शब्द से वेष्टि सूक्ष्म शरीर, और अनिल का विशेषण है अमृत। अमृत कहते हैं यहां पर उसे जो अपेक्षित अमृतत्व, अमृत तो अमृत का तो अर्थ होता है मोक्ष, ऐसे मुख्य अर्थ, लेकिन यहां पर मोक्ष नहीं अपितु इसी समष्टि सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति का ही नाम हो रहा है अमृत। वह चीर काल स्थायी होने के कारण जब तक इन पांचों भूतों का अपने परिणामी उपादान कारण मूल प्रकृति में लय नहीं होता तब तक स्थायी रहने के कारण इसे कहा जा रहा है एक प्रकार से अमृत। और पुराणों में लिखा भी है आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते। कहते हैं कि जो भूतों के लय पर्यंत वस्तु रहती है उसे अमृत कहते हैं, अपेक्षित अमृत है वो। तो ये जो सूत्रात्मा है, जिस सूत्रात्म भाव की उपासक को प्राप्ति करनी है, वह सूत्रात्मा जब तक पांचों भूतों का प्रकृति में लय नहीं होता तब तक स्थायी रहने वाला है, इसलिए उसे अमृत कहा जा रहा है। तो ये जो अमृत अनिल है यानी समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उस समष्टि सूक्ष्म शरीर को हमारा ये वेष्टि सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाए, प्राप्त कर लें, ये प्रार्थना है वायु अनिलम अमृतम प्राप्नुयात। इस वाक्य से जब इस स्थूल शरीर से हमारा वेष्टि सूक्ष्म शरीर निकलेगा तो वह किसी दूसरे वेष्टि स्थूल शरीर में वह प्रविष्ट हो ऐसा नहीं, अपितु यह अपने जो अधिदैव भाव है, समष्टि भाव है, उस समष्टि भाव को ही प्राप्त हो जाए। तो प्राण, वेष्टि प्राण समष्टि प्राण को प्राप्त हो जाए, अध्यात्म वाक उसका अधिदैव स्वरूप जो अग्नि है उसको प्राप्त हो जाए, नेत्र आदित्य भाव को प्राप्त हो जाए, मन चंद्रमा भाव को प्राप्त हो जाए, ऐसे प्रत्येक जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने अधिदैव स्वरूप को प्राप्त हो जाए। और यही बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण की उपासना का वर्णन करते समय कहा कि प्राण ने क्या कर दिया कि वागादि इंद्रियों को उनके अपने अपने वेष्टि भाव से उपासक के वागादि इंद्रियों को उनके अध्यात्म परिचिन्न भाव से निवृत्त करके हटा करके उनका जो अपना अधिदैव स्वरूप है अग्न्यादि उसको प्राप्त कराया। इसी सूत्र की एक प्रकार से वो व्याख्या है। ईशावास्य उपनिषद व्याख्या है, बृहदारण्यक उपनिषद व्याख्यान है। तो वायु अनिलम अमृतम प्राप्नुयात इसी की व्याख्या वहां पर करते हुए बताया कि इष्ट देव को ये प्रार्थना कर रहा है उपासक कि हमारा अध्यात्म प्राण अधिदेव सूत्रात्मा रूप बन जाए और फिर इंद्रियों का क्या हो जाए बाकी वो अपने अपने अधिदैव भाव को प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना यहां पर उपासक ने की। तो इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकला समझ लो और अपने अपने अधिदैव भाव को प्राप्त हुआ, उसकी तो व्यवस्था बता दी। और सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से निकल जाएगा तो जिस शरीर में रह करके अधिदैव भाव की प्राप्ति का साधन कर लिया, सायुज्य भाव की प्राप्ति हुई, पूरे ब्रह्मांड का अध्यक्ष जो हिरण्यगर्भ है तद्रूपता को प्राप्त हुआ, जिस शरीर का आश्रय लेकर के साधन किया हुआ जीव, उस शरीर का क्या होगा, उसकी क्या व्यवस्था बता रहे हो? तो कहते इस शरीर को भी जैसे सूक्ष्म शरीर को उसके अपने अधिदैव रूप में प्राप्त कराने की हमने प्रार्थना की, तो ये जो स्थूल शरीर है ये अपने कारण में लीन हो जाए। तो स्थूल शरीर बना है स्थूल पंच महाभूतों से, तो वह अपने अपने पंच महाभूतों में उपादान कारण में लीन हो जाए, प्रकृति में लीन हो जाए। इसी दृष्टि से यहां पर सत्रव्य मंत्र के दूसरे चरण में ये प्रार्थना व्यवस्था बताता है उपासक की, अथ इदम् भस्मांतम् शरीरम भूयात्। इदम् शरीरम यानी जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, इंद्रिय ग्राह्य वस्तु को इदम् शब्द से कहा जाता है, जिसका अनुभव कर रहे हैं अभी वर्तमान में इस स्थूल शरीर का सुख, इसलिए इदम् शरीरम का अर्थ है वर्तमान में इंद्रिय जन्य ज्ञान से ज्ञान का जो विषय बन रहा है, इंद्रियों से हम जिसका अनुभव कर रहे हैं, स्थूल शरीर का इंद्रिय से अनुभव कर रहे हैं, वह स्थूल शरीर क्या हो जा कि जब इसे स्थूल शरीर के संबंधी अंतिम जो आवनीय अग्नि है चिताग्नि को भी बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि उपासक की जो अंत्येष्टि होती है वो अंत्येष्टि भी एक यज्ञ है, उसे पितृ मेघ नाम का यज्ञ कहा जाता है अंत्येष्टि यज्ञ। तो ऐसी इसलिए जीवित अवस्था में भी ऐसी ही पंचाग्नि उपासक चिंतन करता है अंतिम अग्नि का भी कि ये जो चिता है और चिता में प्रदीप्त अग्नि है वह एक प्रकार से आह्वनीय अग्नि है और उसमें आहुति डाली जा रही है इस शरीर की मृत शरीर की, ऐसा चिंतन करता है। और ये जो शरीर है चिता रूपी आह्वनीय अग्नि में डाली हुई एक प्रकार से आहुति, जैसे यज्ञ करते समय घृत आदि की आहुति डालते हैं, ऐसे चिता रूपी आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य है ये स्थूल शरीर। और इस स्थूल शरीर का क्या हो जा तो कहते भस्मांतम भूया, वो चिता की जो अग्नि है इसे जिन लकड़ियों से वह प्रदीप्त हुई है उन लकड़ियों को जैसे भस्म करती है, ऐसे इस शरीर को भी भस्म कर दें। तो भस्म ये इसमें पृथ्वी का अंश अधिक होने से इसे पार्थिव कहा जाता है और भस्म भी पृथ्वी है। क्या मतलब? इस स्थूल शरीर में जो पार्थिव अंश है वह पृथ्वी में लीन हो जाए और इस स्थूल शरीर का जो जलीय अंश है वह जल में लीन हो जाए, जल रूप हो जाए, और जो तेज का अंश है वो तेज बन जाए, और इस शरीर में जो वायु का अंश है वह स्थूल वायु में विलीन हो जाए, और जो आकाश का अंश है वह स्थूल आकाश में विलीन हो जाए। ऐसे स्थूल पांचों भूतों से बना हुआ जो यह पांच भौतिक स्थूल शरीर है, इसमें जिस जिस भूत का जो जो अंश है उस भूत में वह अंश मिल जाए। ये एक प्रकार से यहां पर भस्मांतम इदम शरीरम भस्मांतम भूयात इस वाक्य से उपासक प्रार्थना करता है। और भगवान अपने इष्ट देव से कर्मफल विधाता से उपासक ये प्रार्थना कर रहा है कि जो मेरा आप तो कर्म के अनुसार सबको फल देते हैं, हम जानते हैं यदि हमारी साधना न हो तो आप कुछ दे नहीं पाएंगे, कर्म के अनुसार ही ईश्वर देते हैं। कर्म सापेक्ष प्राणियों का जो जगत में आवश्यक वस्तुएं हैं उनका निर्माण करते ईश्वर, और बिना कर्म के यदि ईश्वर कुछ प्राणियों के लिए कुछ दे और दूसरों के लिए दुख के निमित्त भूत वस्तुएं दे तो राग द्वेषवान हो जाएगा। ईश्वर तो राग द्वेष निरपेक्ष होने के कारण, पक्षपात रहित होने के कारण सबको उनके अपने साधना के अनुसार ही निरपेक्ष भाव से ठीक ठीक फल देते हैं। कर्मफल विधाता मात्र है, आपके द्वारा किए हुए साधना का ठीक से आपको फल देते हैं। इसलिए उपासक कह रहा है कि मेरी जो साधना है उसका आप स्मरण करिए और उसके अनुसार मुझे आप फल दीजिए। तो उत्तरार्ध में यही प्रार्थना है उपासक की कि ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। बृहदारण्यक उपनिषद में ईशावास्यो उपनिषद की व्याख्या करते हुए ओम को ब्रह्म की उपासना के लिए प्रतीक बताया है। ओम खम ब्रह्म ऐसा एक वाक्य आता है, उसमें बताया गया कि खम ब्रह्म की भावना ओंकार रूप प्रतीक में उपासक करें। जैसे आजकल हम लोग प्रतिमा को देख करके जिस देवता की प्रतिमा है मूर्ति है उस देवता की भावना करते हैं। प्रतिमा तो या तो पत्थर की होती है या तो किसी धातु की होती है। आप चक्षुइंद्रिय मात्र से प्रतिमा के ओर दृष्टि डाल करके प्रतिमा को देखोगे तो जिस धातु से वह प्रतिमा बनी है उस धातु के आकार विशेष को मात्र चक्षुइंद्रिय दिखाएगा। यदि संगमरमर की प्रतिमा है तो चक्षुइंद्रिय से मात्र आप देखोगे, नेत्र इंद्रिय बाह्य भौतिक चक्षु से, तो आपको लगेगा कि कृष्ण के आकार का ये संगमरमर का पत्थर है मात्र। लेकिन एक शास्त्र से आपको भावना नेत्र प्राप्त होता है, और उसमें आपने वैदिक विधि के अनुसार वैदिक मंत्र से भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा की है। तो जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस दिन से फिर आपको एक भावना नेत्र प्राप्त होता है शास्त्र से, और उस भावना नेत्र से आपको कृष्ण दिखता है। ये केवल संगमरमर की मूर्ति मात्र नहीं है, मंदिर में स्थापित मूर्ति और दुकान में रखी हुई मूर्ति में आप अंतर करते हैं। उसको तो अभी देवता के रूप में गृहित नहीं करते, एक मूर्ति है सामान्य अपने पत्थर की, चौराहे पे किसी नेता की मूर्ति खड़ी है और मंदिर में भगवान की मूर्ति है, इन दोनों में अंतर करते हैं। इसलिए कि वो तो खाली स्मरण मात्र के लिए एक स्टैच्यू ऐसे खड़ा किया है, और यहां पर तो शास्त्र विधि से उसमें देवत्व आ गया है। तो भावना नेत्र से आप देखते हैं, चर्म चक्षु आपको जो एक संगमरमर कृष्ण के आकार का दिखा रहा है उसमें भावना करते हैं कि ये कृष्ण है। तो ये कृष्ण की प्रतीक हो गई यह मूर्ति, और उसमें आप भावना नेत्र से देख रहे हैं कृष्ण। ऐसे ओम एक शब्द है, और वह ओम ऐसा ध्वनि करते हैं तो जो ध्वन्यात्मक शब्द होता है उसे आपको आपकी श्रोत्र इंद्रिया बताती है कि ओम इत्याकारक एक ध्वनि हुआ। जैसे चक्षु इंद्रिय ने मूर्ति को दिखाया, ऐसे श्रोत्र इंद्रिय दिखाएगा आपको ओम इत्याकारक ध्वनि हुआ। लेकिन ओम खम ब्रह्म ये जो शास्त्र है ये आपको एक भावना नेत्र दे करके कह रहा है कि आप अपने मुख से उच्चारित और कान से श्रुत जो ओम इत्याकारक ध्वनि है इसको एक सामान्य ध्वन्यात्मक मात्र मत लीजिए, उसमें आप ब्रह्म की भावना करिए, यही ब्रह्म है करके। वैदिक काल में यही सब प्रतीक थे, मूर्ति आदि की कम प्रथा थी। तो ओम ये जो ध्वनि करता था उपासक हो ही जाता बोलने पर, और उसके द्वारा उच्चारित ओम इत्याकारक ध्वनि को सुन भी लेगा। तो ये जो ध्वनि हुआ उस ध्वनि को केवल एक शब्द मात्र गृहित न करके गृहित करता था ओम खम ब्रह्म, इस शास्त्र के द्वारा प्रेरित होकर के ये ब्रह्म है करके, शालिग्राम को जैसे विष्णु है करके गृहित करते हम, नर्मदेश्वर को शिव के रूप में भावना बना करके भावना से देखते हैं। ऐसे ओम इस प्रतीक में ब्रह्म की दृष्टि का विधान ओम खम ब्रह्म यह बृहदारण्यक उपनिषद वाक्य करता है। तो उससे एक प्रकार से क्या हुआ, जैसे कृष्ण की भावना बनाने के लिए मूर्ति प्रतीक हुई, विष्णु की भावना के लिए शालिग्राम प्रतीक हुआ, शिव की भावना के लिए नर्मदेश्वर प्रतीक हुआ, ऐसे ही ओम ये ध्वनि खम ब्रह्म की भावना के लिए प्रतीक है, आलंबन है, आधार है। तो शालिग्राम सामने आते ही भावनाशील व्यक्ति उसे एक पत्थर के रूप में गृहित न करके यही विष्णु है इस रूप में गृहित करता है। ऐसे ओम इस प्रतीक में भी उपासक ने ब्रह्म की भावना की है, इसलिए ओम इस प्रतीक के रूप में प्रतीक अभिन्नतया संबोधित कर रहा है ओम इस शब्द से अपने इष्ट देव को कि ओम। और जीवन भर उसने एक संकल्प किया था इष्ट देव के रूप में, तो इसलिए इष्ट देव संकल्प यानी वृत्ति ध्यान करते करते उसके वृत्ति का आकार धारण कर चुका है, इसलिए उसे कर्तुरूप भी समझ रहा है यानी कर्तवात्मक समझ रहा है। इसलिए ओम और क्रतु यानी क्रतु स्वरूप हमारे चित्त वृत्त्यात्मक ही आप हैं, इस रूप में एक प्रकार से ओम क्रतु ऐसा संबोधित करके ये कह रहा है कि आप स्मरण करिए किसका, यन मया कृतम, जो मैंने जीवन भर साधना की है। आप कर्मफल विधाता है, मैंने जीवन पर्यंत अपने वर्ण और आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान किया है और आपका आत्म रूप से चिंतन किया है। तो ये जो मेरा कर्म एवं उपासनात्मक साधन है, इसका आप स्मरण करिए। और स्मरण करके उसका फल मुझे दीजिए। कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल हमने शास्त्र से समझा है कि सायुज्य की प्राप्ति होती है, इसलिए सायुज्य आप मुझे दिला दीजिए। इसी अभिप्राय से ओम क्रतो स्मर कृतम ये प्रार्थना है। कृतम स्मर, मेरे कर्म एवं उपासना का आप स्मरण करिए। और जो मैंने अभी एक प्रकार से क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासना उपासक ने की है, उसका एक अंतिम जन्म होना है ब्रह्मलोक में, और उसके बाद में तोषे मुक्त होना, विदेह मुक्ति को प्राप्त करना है। इसलिए आपके सायुज्य भाव की प्राप्ति का साधन भूत जितना कर्म है उसका भी आप स्मरण करिए, कर्म उपासना का। और पूर्व जन्मों में हुआ जो हमारा कर्म होगा उसका भी आप स्मरण करिए। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, ऐसे यहां पर दूसरे जो क्रतो स्मर कृतम स्मर दो बार एक ही वाक्य है ना, वो इस अभिप्राय से है कि इसकी आप उपेक्षा मत करिए, मेरे कर्तव्य का अवश्य स्मरण करिए। ये अवश्य साधना का स्मरण कराने के उद्देश्य से यहां पर दो बार उपासक याद करा रहा है अपने इष्ट से। और ये कह रहा है कि जितना यदि कोई प्रतिबंधक भी है तो उसे आगे वाले मंत्र में बताएगा कि उसे आप हटा दीजिए। यदि कुछ थोड़ा बहुत पाप दिखता है संचित में हमारे, और क्रम मुक्ति का हेतुभूत आपका सायुज्य ही हमको दिलाइए। इस प्रकार यहां पर 17वें मंत्र में उपासक ने क्या किया, एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इन दोनों की व्यवस्था को बताया कि ऐसी ऐसी व्यवस्था हो, और अपने कर्म का स्मरण कराने की भी वो एक प्रकार से याद दिलाई भगवान को। और ये एक प्रकार से प्रारब्ध बना चुका है भावी शरीर का। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि इस स्थूल शरीर को छोड़ करके जाने वाला जो जीव है उसके साथ जाता है, तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते पूर्व प्रज्ञा च, के अनुसार ये जाने वाला जो जीव है उसके साथ कर्म और विद्या ने उसका चिंतन और पूर्व प्रज्ञा ने वासनाएं, ये साथ में जाती है जितना भी कर्म है किया हुआ और चिंतन है मानसिक कर्म और पूर्व प्रज्ञा ने वासनाएं। और जिस समय ये शरीर छोड़ना होता है उस समय शरीर छोड़ने से पहले ही भावी शरीर का प्रारब्ध यहीं रहते रहते बन जाता है। इस शरीर में रहने का प्रारब्ध समाप्त हुआ तो फिर आप इस जगत के इस शरीर से रूपादि विषयों में से कुछ भी विषय ग्रहण नहीं कर पाते जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुरंत निकल भी जाते हो ऐसा नहीं, प्रारब्ध समाप्त होते ही इस शरीर से जाना होता ऐसा नहीं, बीच वाली संधि अवस्था होती है। इस शरीर का प्रारब्ध समाप्त तो हुआ,